नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा फिर से शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के प्रदर्शन की सराहना की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन सेवा ने 3 वर्षों के भीतर सभी राज्यों को कवर किया। इसरो नासा के सहयोगी उपग्रह निसार का प्रक्षेपण आज शाम श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास आज भीषण भूकंप के बाद रूस, जापान और अमेरिका के हवाई के कुछ हिस्सों में सुनामी की लहरें उठी। प्रशांत क्षेत्र में भी चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी ने आज बिहार, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के सशक्त, सफल और निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा फिर से शुरू हो गई है। चर्चा में भाग लेते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों के प्रदर्शन और क्षमताओं की सराहना की और कहा है कि इसके परिणामों ने देश को गौरवान्वित किया है।
It's a privilege to participate in the discussion on Operation Sindoor. And like everybody else in this house, I laud the performance of our armed forces and the results that have done this country so proud. The Pahalgam attack happened on April 22nd. Across the world, there was solidarity. But the question was, what after? And the answers were two. One, such an attack was absolutely unacceptable. It crossed our red lines. There had to be severe consequences. And two, there had to be accountability and justice.
श्री जयशंकर ने कहा है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के पीछे की मंशा जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को तबाह करना था, जो अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से सामान्य स्थिति और समृद्धि की ओर लौट आई थी। मंत्री ने कहा है कि हमले के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में पहला निर्णय यह लिया गया है कि सिंधु जल संधि को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद को अपना समर्थन पूरी तरह से बंद नहीं कर देता। उन्होंने कहा है कि 1947 में सीमा पार आतंकवाद का सामना कर रहा है और खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। डॉ जयशंकर ने कहा है कि बुनियादी दुनिया में कभी भी ऐसा कोई नीति नहीं था जिसने भारत से अपनी गतिविधियां बंद करने को कहा हो। उन्होंने कहा है कि 22 अप्रैल से 16 जून तक प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच व्यापार से कोई संधि नहीं था और न ही उनके बीच कोई फोन में कॉल भी हुई थी।
Indus Waters Treaty is being corrected. It will be held in abeyance until Pakistan irrevocably gives up its support of terrorism. We had warned that blood and water cannot flow together. Today we are demonstrating that what we say we will do, blood and water will not flow.
डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत ने संदेश दिया है कि वो मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं है और परमाणु ब्लैकमेल को स्वीकार नहीं करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 3 साल की छोटी सी अवधि में सभी राज्यों को वंदे भारत ट्रेन सेवा से जोड़ दिया गया है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया है कि वर्तमान में देशभर में 144 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। उन्होंने कहा है कि इस ट्रेन के परिचालन संबंधी फीडबैक बहुत उत्साहजनक है, जिसके कारण राज्यों से ऐसी ट्रेनों की मांग बढ़ी है। श्री वैष्णव ने कहा है कि सरकार मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि संचार साथी पहल की मदद से 1,36,000 से ज्यादा फर्जी मोबाइल एप्लीकेशन काटे गए हैं। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में श्री सिंधिया ने कहा है कि इस पोर्टल पर 35 लाख से ज्यादा लोगों ने मोबाइल चोरी की शिकायतें दर्ज कराई है। उन्होंने बताया है कि इनमें से 21 लाख से ज्यादा चोरी हुए मोबाइलों का पता लगाया गया और 5 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटा दिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि वर्तमान में बैंक और वित्तीय संसाधन, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस, सुरक्षा एजेंसियों और दूरसंचार सेवा प्रदाता सहित 620 संगठन इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी कथित चिकित्सा आपूर्ति घोटाले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। ईडी ने बयान में कहा है कि यह परिसर मोक्षित कॉरपोरेशन के शशांक चोपड़ा या छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड सीजीएमएससी के अधिकारियों से संबंधित है। एजेंसी ने कहा है कि शशांक चोपड़ा ने सीजीएमएससी के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके अवैध रूप से चिकित्सा उपकरणों और अभिकर्मों की आपूर्ति का दर अनुबंध हासिल किया है। एजेंसी ने कहा है कि दर अनुबंध हासिल करने के बाद श्री चोपड़ा ने फिर से डीएचएस और सीजीएमएससी के अधिकारियों को प्रभावित किया और लगभग 500 करोड़ रुपए के खरीद आदेश जारी करवाए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज पृथ्वी अवलोकन उपग्रह नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार का प्रक्षेपण करेगा। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:40 पर जीएसएलवी F-16 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रक्षेपण के लिए उल्टी गिनती कल दोपहर 2:10 पर शुरू हो गई थी। पहली बार भारत का जीएसएलवी रॉकेट किसी उपग्रह को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करेगा, जहां से उपग्रह प्रतिदिन एक ही समय पर पृथ्वी पर एक ही बिंदु का अवलोकन करेगा। एक रिपोर्ट।
आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जीएसएलवी F-16 रॉकेट से शाम 5:40 पर ये प्रक्षेपण होगा। इस मिशन का उद्देश्य प्रत्येक 12 दिन पर पूरी पृथ्वी और इसके आंतरिक हलचलों का बारीकी से निरीक्षण करना है। इससे जलवायु परिवर्तन अनुसंधान और आपदा कार्रवाई के लिए उच्च गुणवत्ता के स्पष्ट चित्र और डेटा उपलब्ध होंगे। ये धरती और हिमखंडों में हो रहे बदलावों का भी अध्ययन करेगा। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
भारत ने सीरिया के लोगों के लिए मानवीय सहायता की एक खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस खेप में 5 मीट्रिक टन आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयां जैसे कैंसर रोधी दवाई, एंटीबायोटिक्स और उच्च रक्तचाप की दवाई शामिल की गई है। रूसी तट पर आए भीषण भूकंप के बाद रूस, जापान और अमेरिका के हवाई के कुछ हिस्सों में सुनामी की लहरें उठी है और दर्जनों अन्य देशों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह रूस में कामचटका प्रद्वीपीय में 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके बाद प्रशांत महासागर में व्यापक सुनामी की चेतावनी जारी की गई है और कई देशों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। इस बीच अमेरिका की राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार सुनामी कैलिफोर्निया के तट तक पहुंच गई है। इंडोनेशिया के पपुआ स्थित जायापुरा शहर की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने तटीय क्षेत्र के निवासियों से ऊंचे स्थान पर जाने की अपील की है। जापान के मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि सुनामी की लहरें देश के तटीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य पहली बार नहीं किया जा रहा है, ऐसा कई बार हो चुका है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और इस प्रक्रिया के दौरान की गई जरूरत नहीं है और क्योंकि ये तकनीक का इस्तेमाल केवल वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने विपक्षी सदस्यों से बिहार में मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यह निर्वाचन आयोग का निर्णय था और इससे लेकर विपक्ष का विरोध अनुचित है। मत्स्य और पशुपालन राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि निर्वाचन आयोग पुनरीक्षण कार्यक्रम लोकतंत्र को मजबूत करने और देश के फायदे के लिए कर रहा है। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर विदेशी घुसपैठियों के समर्थन से भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज पूंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकवादियों को मार गिराया है। आकाशवाणी की जम्मू संवाददाता ने बताया कि आतंकवादी लश्कर ए तैयबा संगठन से जुड़े थे। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों का हाल ही में सफाया किए जाने के बाद ये मुठभेड़ हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जनामणि ने बताया कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी तेज बारिश होने की संभावना है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 16 जिलों ईस्ट कमिंग, वेस्ट कमिंग, कुरुंग कुमे, क्रादादी, पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, शियोमी, सियांग, वेस्ट सियांग, अंजाव, लोहित, नामसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।